वीरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महापदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यां प्राव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्यायुरा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् कृष्ण तवैवास्मि नजिमान् इति विज्ञाय राधे तं नयमान् सर्वप्रथमे अस्मदीय परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षद भक्ति प्रज्ञान के सगुस्वामी महाराज जी के चरणों का चरण कमलों में साष्टांग दंडवती प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में और अपने शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि बार श्रद्धा दंडवत पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। तत्पश्चात आदरणीय त्रिदंडीपादगण वैष्णव वैष्णवीगण सज्जनगण आज हमारी परिक्रमा समुद्रगढ़ चंपकहट्ट और फिर विद्यानगर होकर के ऋतु दीप होकर के यहाँ एखने ते उपस्थित हुए छे। समुद्रगढ़ेर कथा ओखने अपनारा श्रवण करे छे कोल द्वीपर अंतर्गत सेठी समुद्र गढ़ी समुद्र शेखाने ऐसे गंगा पर्यंत महाप्रभुर लीला दर्शन करते और गंगा के बोलने तुम्हें परम सौभाग्यवती जे तुम्हारे उपकूले थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र गौर रूपे थे तिनी एखने ते लीला विलास कर गंगा देवी बोलें शीघ्र ही तिनी सन्यास निये तुम्हारे ओखाने जाबे और ओखाने ते तुम्हार समुद्र उपकूले थे बहुविध विरह मई लीला के नित प्रकाश करबे तो समुद्र गंगा एक समुद्र गढ़ी थे ऐसे तहार दर्शन करते और समुद्र से ने संबंध है सुने छेन भीम से ने संबंध है। भीम भगवान एकांतिक भक्त प्राचीन भक्त समुद्र से परवर्ती काले भीमसेन द्वारकार कृष्ण परिकर समुद्रसेन नवदीपे ते महाप्रभुर परिकर अपना देखुन जैसे कई कार भक्ति से अतएव समुद्र से भक्त लोग भीमसेन माध्यमे कृष्ण के ओखने दर्शन करे छिले से समस्त कथा ओखने रसानंद प्रभु इत्यादि और के
श्री कृष्ण
प्रभु वन महाराज सुलस दूटे पार्टी ते करिए दिए सब कथा बेस रोचक ओखने हो समय ते आमी आ त्रिविक्रम महाराज जे रकम होतो जनार्दन महाराज माछ खाने थी के मेट माट कर देते अद्भुत कथा से ही समस्त होते भीम बलवान तार बहुत
बोले दारका बलवान नवदीय बलवान ना
क्या बहुत अच्छा তারপরে আপনারা চম্পক হট্টেতে আসলেন সেখানেতে জয়দেব গোস্বামী অদ্ভুত ভক্তির কথা শ্রবণ করে থাকবেন জয়দেব গোস্বামী ওখানে গীত গোবিন্দ লিখছিলেন লিখবার সময় তার ভাবেতে আসলো রাধারানী মান করেছেন আর সেই মানকে দূর করবার জন্য কৃষ্ণ তিনি কিরকম ভাবে তার পদানত হয়েছেন তার মুরলী চরণেতে রেখে দিয়ে কি বলছেন স্বর্গর লখণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম দেহি পদ পল্লবম কিন্তু লিখতে পারবেন না কৃষ্ণ সমস্ত ভগবানের ও ভগবান রাধারানী তাহার সেবিকা আর তাহার চরণীতে তিনি মস্তক দিবেন এটা তো অসম্ভব কথা এই জন্য মাঝখানে তাহার পুস্তক বন্ধ করে দিয়ে আর গঙ্গা স্নানে চলে গিয়েছে ওখান থেকে গঙ্গার নিকটে এক দু মাইল ওখানে গিয়েছে আর ইতিমধ্যে কৃষ্ণ তাহার রূপ ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হলেন তাহার স্ত্রীকে বললেন আমার একটি কথা মনে পড়ে গিয়েছে তুমি বইটা নিয়ে আসো আমি একটা লিখে দিয়ে যাই সে বই এনে দিয়েছে আর সেটি লিখে দিয়েছেন নিজে হাতে স্মর গর লখণ্ডন মম শিরসি ধরে দেই মম পদ্ম পল্লবম নিজে হাতেতে স্বর্ণাক্ষরেতে লিখে দিয়েছে কুচক্ষণ পরে কৃষ্ণ জয়দেব গোস্বামী স্বয়ং স্নান করে এসেছেন বলি অত তাড়াতাড়ি করে তুমি কীরকম স্নান করে আসলে মাঝখানেতে এসে কি একটা লিখে দিয়ে গিয়েছো আবার ফের এসেছো চট করে ও আমি আসি নাই তো কে এসেছিল বইটা নিয়ে এসো দেখি দেখেন যে সে এই পদটা লেখা আছে তখন তিনি ক্রন্দন করতে করতে লাগলেন আমার এখানে সন্দেহ ছিল আর আপনি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করে দিয়ে আর আপনি স্বয়ং লিখেছেন স্বর্ণাক্ষরেতে একেবারে লিখে দিয়েছেন তখন তার স্ত্রী শরণেতে পড়েছি যে তুমি পরম সৌভাগ্যবতী তুমি কৃষ্ণকে দর্শন করলে আমি করতে পারি না অজোর নেত্রে ত্রে ক্রন্দন করতে লাগল তারপরে মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে তিনি আবার চলে গেলেন জগন্নাথপুরী গীত গোবিন্দের পথ কৃষ্ণ শ্রবণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন জগন্নাথপুরীতে একবার কোনো দেবদাসী এই গান করতেছিল তখন জগন্নাথ দেব ঘরের সব কপাট খুলিয়ে অদ্ভুত কপাট সব তালা বন্ধ সে খুলে দিয়ে আর দৌড়িয়েছেন আর কাঁটাতে কুঞ্জা দেখে করিল কাঁটা সে তাহার অঙ্গেতে খরচ লেগে গিয়ে ঘরে
কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে
তথাপি দৌড়ে গিয়েছে
শ্রবণ করে আবার ফের সকালবেলা পূজারি দেখে যে তাহার অঙ্গেতে সবগুলি কি খরচ
ক্ষতবিক্ষত
ক্ষতবিক্ষত দেখলেন, কাপড় ছেঁড়া দেখলেন, কে আসলো? তখন জগন্নাথ দেব স্বপ্নে জানাইলেন যে আমি গিয়েছিলাম দেবী দেবাস। আর একদিন মহাপ্রভু যাচ্ছিলেন টোটা গোপীনাথে, সেইখানে একটা দেবদাসী এই পদ কীর্তন করতেছিল, জয় জয় দেব হরে শীত কমলা কুচ মণ্ডল ধৃত মণ্ডলে ধৃত মণ্ডলে কলিত ললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে। এর প্রতিটি পদ রাধার সঙ্গে সম্বন্ধিত আছে আর অদ্ভুত রসযুক্ত। সেই মহাপ্রভু নিজেকে ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না, দৌড়লেন তাহাকে ধরতে আলিঙ্গন করতে। গোবিন্দ দেখল যে সে যদি তাহাকে স্পর্শ করেন তাহলে তো সমুদ্রের মধ্যে লাভ দিয়ে মরবেন না, কি হবে, দৌড়ে দৌড়ে ধরতে পারে না। তখন বলল যে সে মেয়ে লোক গান করছে, তখন শান্ত হয়ে গেলেন, নিকটে যেয়ে আর তাহাকে স্পর্শ করেন। বলে যে তুমি গোবিন্দ আজকে রক্ষা করলে, যদি আমি স্পর্শ করতাম তাহলে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে আমি প্রাণ দিতাম। এই যে জয়দেবের গীত গোবিন্দ, অদ্ভুত। কৃষ্ণ কৃষ্ণের কর্ণেতে অত্যন্ত রসায়ন, রাধারণী মহিমা যুক্ত এই পদ।
জগন্নাথের মন্দিরে আর বাইরে রাত্রে কই কীর্তন করতে পারে?
হ্যাঁ, রাত্রেতে কেউ আশপাশে আর কীর্তন করতে দেয় না, জগন্নাথ বেরিয়ে যাবে।
রাত্রে জগন্নাথ মন্দিরে হয় প্রতিদিন।
তারপরে তিনি এইখানেতে জয়দেব মহাপ্রভু দর্শন পেয়েছিলেন। আর জগন্নাথ দেব যেতে চান নাই জগন্নাথ পুরীতে, মহাপ্রভু বললেন যে সে তুমি যাও ওখানে আমার লীলা আরও সব দেখবে। তখন তাহাকে পাঠান ওখানে গিয়েছে, আরও পদাবলী সব লিখেন। উড়িষাতে সর্বত্র তাহার গীত গোবিন্দ প্রচারিত আছে, আর ওখানকার লোক এইসব পদাবলী সবটা অদ্ভুত স্বরেতে গান করে। তারপরে আপনারা বিদ্যানগরে গিয়েছিলেন, ওখানকার কথা সবগুলি শুনলেন। সব বিদ্যা যে মূল পুরুষরা ওখানে গিয়েছে আর ওইখান থেকে শিখে তারপরে সর্বত্র গিয়েছে। মহাপ্রভু ওখানেতে যেতেন, তাহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু ছিলেন বিশারদ, কি মহেশ্বর বিশারদ। মহাপ্রভু ওখানেতে যেতেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্থান সেটি। সার্বভৌম কীরকম ছিলেন, যখন ওখানে ছিলেন তখন মিথিলাতে গিয়েছিলেন নব্যের ন্যায় শিখবার জন্য। যখন শিখা হয়ে গেল তখন ওখানকার বইগুলি নিয়ে আসতে চান, ওরা জেনে সব বইগুলিকে আটকে দেয়, নিয়ে ছিনে নিল। তখন তিনি ওখান থেকে বেরিয়েই আবার সেটি স্মৃতিতে সমস্ত গ্রন্থগুলিকে লিখে দিলেন, আর নিয়ে এসে নদীপেতে নব্য ন্যায় আরম্ভ হল। আর পৃথিবীতে কোনো জায়গাতে নব্য ন্যায় নবদ্বীপের মতো নাই, মিথিলার থেকে এইখানে চলে আসে। তো এই সবগুলি কথা হয়েছে। আজকে সবিতা ইয়া হ্যাঁ সবিতা আও তো দু চার কথা বল। সবিতা ইজ কামিং
না, আপনি যে বলেন ইংরেজি অনুবাদ হবে তো?
ও ঠিক, আচ্ছা দু মিনিট বাদ। ইসকে বাদ মে মধু বলে, হ্যাঁ মধু হ্যাঁ আচ্ছি বলে। মহাপ্রভু কা বৈশিষ্ট্য
কৃষ্ণ কৃষ্ণ subsidized by the Master Sri Guru Gauranga, we visited the holy places of Samudragat, Champakbhat, then coming back through Vidyanagar, through the island, which is where we returned back here. There in Samudragat, the ocean, who is the husband of all rivers, said to the Ganga, "Oh Ganga Devi, you are most fortunate, because the Supreme Personality of Godhead, Swami Bhagavan, Sri Gaurasunda, he will perform, take bath and perform leelas in you, in the ocean. You will also be fortunate, because when Gauranga Mahaprabhu takes a nyas and goes from Navadvip, he will go towards the bank of the ocean and he will perform many astonishing leelas full of mood and separation there on your bank." There also was the astonishing katha between Samudra Sen and Veen Sen. Veen Sen is a very old devotee, a parika, an associate of Dwarka. And Samudra Sen is a parika of Sri Navadvip Dham. There by the mercy of Veen Sen, Samudra Sen had darshan of Krishna. And there is a very astonishing katha. The Buddha said he's remembering when himself, Sri Chukka Maharaj, Sri Puttaparjanan Maharaj would have all type of discussion there. Then we went to Champakbhata. There is the place of Sri Jayadev Goswami. There he composed Sri Geet Govinda. And there in Geet Govinda he was describing Radharani's very Gurujaya man, her very strong mood of man towards Krishna. In his meditation, he saw that Krishna, in order to break the mind of Radhika, was offering his flute, offering his peacock feather, offering his pitamba. But finally, he offered his head at the feet of Radharani. And Sri Jaya Goswami hesitated. Krishna is Bhagavan, Sarvashaktiman, the possessor of all potencies. How is it possible that his potency, Radha, will put her feet upon his head? Therefore he closed the book and he went to cool his head by taking bath in the Ganga. Meanwhile, Krishna himself came in the form of Jayadev and said to Padma, the wife of Jayadev, "Oh, I want to finish writing that book. Therefore bring my book." And in golden letters, Krishna completed the verse, "Smaragara Kandanam, Sirsi Mahi, Sirsi Mandanam, Dehi Padapalam Udam." When Krishna left, then again Jayadev Goswami came. Then his wife Padma asked, "You are coming, going, why? You just went a minute ago, you came back, you brought something. Now again you left, now again you're coming." Then Jayadev Goswami said, "No Devi, I don't know anything, not the same." Then he saw the writing of Krishna, he began weeping. "I had a doubt, but Krishna, you cleared that doubt with your own hand." Therefore Jayadev Goswami fell at the feet of Padma, saying, "You are fortunate, you have darshan of Krishna. I could not get that good fortune." Then on the desire of Chaitanya Mahaprabhu, he left Navadvip and went to Jagannath Puri after writing the Govinda. There one night, when Jagannath Dev was hearing the composition of the Govinda, he became restless and he opened the doors of the temple and ran there to hear. As he ran, the various thorns scratched his body and his cloth. In the morning, Pujari could see the scratches on the mark of Jagannath, and he became filled with bewilderment. But Jagannath appeared in his dream and explained the situation. Kali Tala Lita Vanaman, how Geet Govinda is filled with the glories of Srimati Radhika in a hidden way. Therefore, when Chaitanya Mahaprabhu also heard that Geet Govinda, he also ran towards the thorns to embrace the singer. And Govinda said, "Oh Mahaprabhu, it's a woman." Then Mahaprabhu controlled himself and said, "Govinda, oh Govinda, you saved my life. If I had embraced a woman, I would have had to commit suicide by giving up my life in the ocean." Therefore, this Geet Govinda is a rasayan, a nectar-giving tonic. It is filled with the glory of Srimati Radhika. Therefore, even today, at night time, no one is able to sing Geet Govinda within the precincts of Jagannath Temple, due to fear that Jagannath may run again. Jayadeva Goswami also had Darshan of Chaitanya Mahaprabhu there in Jagannath Puri. Therefore, the Kirtan is so much famous. Even today in Orissa, his kirtans, his padyavali is sung and preached everywhere. Then we went to Vidyanagar. That is the place of Sarvabhauma Bhattacharya and also the friend of Jagannath Mishra there, Maheshwara Visaya. There Sarvabhauma Bhattacharya composed his Navya Naya, his new thesis on logic and argument. So today we went to all those places. Go
Shabita. चैतन्य महाप्रभु के वैशिष्ट, उनकी शिक्षा, उनका अवदान।
जब भाव को उन्होंने ले लिया, राधा जी समझ गए अभी तो मेरे भाव की महिमा तुम्हें पता नहीं, जब मैं हाथ शुरू करके पृथ्वी पर गिरती थी तो मैं सहन कर लेती थी उस पृथ्वी की चोट को, प्रणा तो बहुत ही कोमल है उसको भाव को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने ही अंत क्रांति से अपने प्राण क्रांति को ढक लिया। क्यों? क्योंकि जब वे मेरे भाव को आस्वादन करके हा नाथ हा रमण फारसी महाभुजा इत्यादि भावों का आस्वादन करेंगे और पृथ्वी पर प्रसाद खाकर गिरेंगे तो उनकी शरीर की रक्षा करने के लिए अंग क्रांति के रूप में वह श्री विश्वान बन रही है। प्यारे की प्राण रक्षा करने के लिए हमें शरीर से लिपट दें, इसलिए गौर सुंदर की गौर क्रांति हुई और नाम धराया गौर। उसी समय जिस समय महाप्रभु पृथ्वी पर आविर्भूत होने वाले थे, परिचरण आए साधु नाम के वैश्य जल दुष्ट नाम, यह भी एक कारण उपस्थित हो रहा था। तीसरा कारण था कि प्राय जगत में शुद्ध भक्ति लुप्त हो रही थी। कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, गुणी भूता, प्रधानी भूता इत्यादि भक्ति के द्वारा प्रभु की आराधना की जा रही थी। इसे देखकर महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य को बड़ा कष्ट होता था। उन्होंने अपने प्राणनाथ की, अपने आराध्य देव की तुलसी और गंगा जल से आराधना करके भुला रहे थे, अर्थात उपासना कर रहे थे। यह तीसरा कारण था। और चौथा कारण मुझे बताते हैं, जो शुद्ध भक्ति विमुक्त हो चुकी थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर जी ने श्री चैतन्य चरितमृत की व्याख्या में लिखा है, शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है ब्रज भक्ति। ब्रज भक्ति में भी रूपालु का भक्ति के भक्तों को ही शुद्ध भक्त कहा गया है। शुद्ध भक्ति प्राय लुप्त हो चुकी थी। महाप्रभु से पूर्व पूर्व आचार्य आए इस धराधाम में विष्णु स्वामी, निम्बादित्य, मध्वाचार्य इत्यादि आए, इन्होंने भी भक्ति का प्रचारण किया, प्रचार किया, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति का प्रचार और आस्वादन किया वह अनवर्जनीय और अपूर्व था उनका। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित होने के कारण ब्रज रस भक्ति का उन्होंने प्रचार और आस्वादन किया। प्रचार पहले तो महाप्रभु ने कैसे इस धारणा में हम लोग आज जो इस पके हुए फल को खा रहे हैं, कैसे खाए हम लोग, गुरु जी ने बार बार अपनी कथा में कहते हैं। महाप्रभु की 48 साल की लीला, जिसमें 24 साल ग्रस्त लीला, 24 साल कि मैं इस जिस भक्ति को लेकर आस्वादन कर रहा हूँ उसका भी मुझे प्रचार मेरे से नहीं हो पाएगा अकेले, क्यों? क्योंकि उसमें ये अलग अलग गोस्वामियों के द्वारा अलग अलग भावों को चित्रण कराया, जैसे वैदिक भक्ति सनातन गोस्वामी जी के द्वारा स्थापित कराई, नाम की महिमा हरिदास ठाकुर जी से कराई, और धार्मिक और भक्ति रूपाणी का भक्ति जागरण का भक्ति का प्रचार प्रसारण श्री रूप गोस्वामी जी से कराया। रूप गोस्वामी जी को भी अपने सारे भावों को संचरित करके रूप गोस्वामी जी के द्वारा आज इस फल को हम लोग खा रहे हैं स्थापित कराया इस धराधाम में। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के भावों को ग्रंथों के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। उन्हीं भावों को रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कैसे आस्वादन किया जा सकता है, एक भक्त कैसे इन भावों को आस्वादन कर सकता है, सारा उन्होंने उपाय अपने ग्रंथों में बताया है। विशेषकर इस तवावली में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस्तव माला में रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु के वास्तव में भाव को चाहते हैं, शुद्ध भक्ति का आस्वादन करना चाहते हैं, तो बड़ा सुंदर उपाय बताया। क्या बताया? आदो श्रद्धा। सबसे पहले हम लोग साधु और वैष्णवों के मुख से कथा सुनते हैं और उन कथाओं को सुनकर सुनाने वाले की प्रति श्रद्धा होती है। सुनते सुनते फिर क्या होता है? गुरु पदाश्रय करते हैं। गुरु पदाश्रय अगर आज गुरुदेव इस धराधाम में नहीं आते, हम कैसे जानते कि महाप्रभु रसिक शेखर और परम करुण है? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, विशुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, शुद्ध सत्य किसको कहते हैं, कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व भक्ति तत्व जीव तत्व किसको कहते हैं, हम कैसे समझ पाते? अपने गुरु पर आश्रय करके गुरु वैष्णव के चरणों में सब कुछ समर्पित करके निष्कपट रूप में जितने हम लोग समर्पित होंगे उतने ही उनके निष्कपट रूप में हम लोगों के हृदय में भक्ति संचरित होती होगी। यह एक सिद्धांत है कि हम जितने हम लोग सोचते हैं भक्ति क्यों नहीं हो रही, इतने दिन से भक्त हरि नाम करते हैं गरिमा करते हैं, कभी हृदय द्रवित नहीं होता, आप हमें अश्रु नहीं आते, हम कभी समझते नहीं कि गुरु जी के चरणों के हम ऋणियां हैं, क्यों? क्योंकि निष्कपट होकर उनकी सेवा नहीं करते हैं, इसलिए उनके हम लोग ऋणी नहीं कहलाते हैं। हम लोग हमारा प्रथम कर्तव्य है कि अपने जैसे वंशी खोपड़ी होती है ऐसे ही गुरु वैष्णव के चरणों में निष्कपट रूप में यदि जितने हम लोग जितने प्रतिशत में उनके चरणों में आत्मसमर्पित होंगे वह अपने आप ही भक्ति हम लोगों के हृदय में संचरित कर देंगे। इसलिए गुरु पर आश्रय करके भजन क्रिया गुरुदेव जब हम लोगों को दीक्षा देते हैं, दीक्षा का मतलब होता है दिव्य ज्ञान प्रदाति की दीक्षा, अर्थात दिव्य ज्ञान नहीं है यहाँ पर हम लोगों का संबंध जो जन्म जन्मांतर से छूटा आया है, जन्म जन्मांतर से जो ढक गया है हमारा संबंध, उसको गुरुदेव दीक्षा के द्वारा मंत्रों के द्वारा उस संबंध को स्थापित कर देते हैं और उस संबंध को बता देते हैं। हमारे बड़े वैष्णवों का संबंध है हमारी विष्णुमान नंदनी ही आराध्या है, हमारी विष्णुमान नंदनी राधा रानी ही हमारी हृदयश्वरी है, वही हमारी एकमात्र आराध्य है। उनके जो प्राण प्रीतम राधा समर्थ है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, हमारे श्री विष्णुमान नंदनी के प्रियतम है, ऐसा भी संबंध दीक्षा के माध्यम से देते हैं। जब दीक्षा देने के बाद में यह दिव्य ज्ञान एक दिन में उपलब्ध नहीं होता है, अगर निष्कपट रूप में साधन भजन किया जाए गुरु वैष्णवों की सेवा किया जाए तो एक ही जन्म में इस संबंध की उपलब्धि हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हम लोग नहीं कर, मैं आप लोगों की बात नहीं है, मैं अपने हृदय की बात बोल रही हूँ कि हम मैं तो कर नहीं पाती, इसलिए हम लोग इसको उपलब्ध कि कैसे साधन अब गुरु प्रदत्त, अब गुरुजी का तो काम पूर्ण हो गया कि उन्होंने हमको दीक्षा देकर संबंध स्थापित कर दिया। अब शिष्य का काम है कि उस संबंध को इस साधन भजन के द्वारा उपलब्ध करे। यही चैतन्य महाप्रभु की प्रधान शिक्षा गोस्वामी प्रभु के द्वारा हमारे साथ आती है। साधन भजन करते करते हम लोग अनाचली वृत्ति भजन क्रिया शुरू होती है। भजन क्रिया से अनाचली वृत्ति, अनाचली वृत्ति के बाद में निष्ठा, निश्चय बुद्धि हो जाती है। डू और डाई की भावना आ जाती है। करूंगी, मर जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। ये भजन करते करते निष्ठा के दम पर होती है। निष्ठा भी कितने प्रकार की होती है, उस भाव को श्री रविश्वर चक्रवर्ती ठाकुर जी ने माधुर काव्य में वर्णन किया है। निष्ठा के बाद में अपने आप निष्ठा होते होते निष्ठा में प्रतिष्ठित होकर भजन करते 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 स्वाभाविक रूप में निष्ठा रुचि में परिवर्तित हो जाती है। निष्ठा में आस्वादन नहीं होता है, निष्ठा में स्वाद नहीं आता है। कैसा कि मधुर मधुर मंगलम मंगला नाम एकदम, कैसा मधुर से मधुर यह नाम है, आस्वादन नहीं होता है। परंतु जब निष्ठा में भजन स्थापित होकर हम लोग रुचि में पहुंचते हैं तो वह आस्वादन होने लगता है। पहले तो हम बुद्धिपूर्वक उस साधन भजन को करते थे निष्ठा में, रुचि में वह स्वाभाविक रूप में होने लगता है। रुचि में भी कितने प्रकार के हैं, यह सब भावों का वर्णन चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है। रुचि जब रुचि मैचर होने लगती है, बढ़ने लगती है, तब साधक आसक्ति में चला जाता है। आसक्ति के मैचर होने पर सब सिम्टम बताए, अलग अलग लक्षण बताए हैं। हम लोग कैसे जानेंगे कि हम आसक्ति में खड़े हैं, रुचि में खड़े हैं? इस सब भावों को भी श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामी सिंधु में बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया है। उस भक्ति रसामी सिंधु से भी सरल और सहज भाषा में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने रूप गोस्वामी जी के उच्च जो प्रसाद को लेकर माधुर कादंबरी में वर्णन किया है। भाव में जब पहुंचते हैं तो ये पंच भौतिक शरीर छूट जाता है। योग माया उस शरीर को लेकर प्रकट लीला में पहुंच जाती है और वहां जाकर फिर प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव मां भाव रोड अरिरोड मोदन मोदन मोहन सब मदना के भाव में पहुंचते हैं। यह शिव गुरुदेव जो राजा जी के दासी का भाव है, जो मदना महाभाव तक जो साधक भाव के बाद में प्रेम स्नेहान जहाँ जहाँ बढ़ता जाता है उसका वही जो दिया हुआ गुरु जी का मंत्र है, गुरु जी के दिए हुए जो भाव है बढ़ते जाते हैं और श्री राधा जी की सेवा में राधा जी की दासी के रूप में नियुक्त कर देते हैं। इसलिए हम लोग गुरु जी के चरणों के ऋणी हुए, गुरु जी के ये महत कृपा को उपलब्ध करें। हम लोग नहीं कर पाते हैं, वैसे रघुनाथ दास स्वामी ने उपलब्ध किया और कहा वैराग्य जो भक्ति रसम प्रयत्न ये पायल मानवीय समन्वना कृपा मुझे परम दुख दुखी सनातन स्वम प्रभु आश्रयामि। सनातन गोस्वामी जी के कृपा को उपलब्धि करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी लिखते हैं। ऐसे ही हे गुरुदेव हे वैष्णव आप सब कृपा करें, आप लोगों की जो आप लोग हम लोगों का कृपा करते हैं उस कृपा की यदि अनुभूति होगी तो वाणी मुक्त हो जाएगी और एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म तक आपके चिर बिना बने रहेंगे। यही भाषण में ही प्रभु तुम्हारा जी हमको दे दिए सिग्नल की बंद किया जाए। हे गुरुदेव हे वैष्णव हे नवद्वीप धाम हम लोग भिखारी के रूप में आप लोगों के चरणों में आए हैं, आप लोग सब कृपा करके क्यों क्यों मानते हैं भिक्षा, क्योंकि महाप्रभु के पात्र महाप्रभु के परिकर पात्र अपात्र का विचार नहीं करते हैं, वे अपनी शुभ कृपा दृष्टि से ही जीव को विचार करते हैं। ये लोग पतित पावन है, मैं पतित घृणित हूँ, आपके चरणों में यही प्रार्थना करके यही कृपा प्रार्थना करते हैं कि आप भी प्रेम भक्ति लेकर हमारे हृदय में हृदय का पोषण करें।
Dandi Maharaj, will you speak? about the glory of Chaitanya Mahaprabhu, his teaching and other things. Sri Dandi Maharaj. Oh, you.
Sri Dandi.
What name?
Sri Dandi. Sri Dandi. Sri Dandi Maharaj.
Sri Dandi. Yeah. I told Sri Dandi.
Yes.
আছে গোবিন্দ এরপরে ও
বলবো আমি বলবো
I first of all offer thousands and thousands of thunderbolt pranams as the Lord's feet of my beloved Gurudev. Om Vishnu Pada, Paramahamsa, Pariyarika Chaja, Astava Kaisar Shishina, Shiva Bhakti Vedanta Narayan, Vaswami Maharaj. And again, millions of times, as the Lord's feet of our beloved, Nitya Lila, Pravishta Om Vishnu Pada, Paramahamsa, Pariyarika Chaja, Astava Kaisar Shishina, Shiva Bhakti Vedanta, Vaswami Prabhupada. And all the assembled Vaishnava and Vaishnava devotees of the Lord, Dandavat Pranam. Sri Satchinandana Gaudahari Ki Jai! So we have been hearing for many, many days the very sublime and sweet descriptions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his pastimes. In a couple of days from now, we will celebrate the Divine Appearance Day of this extraordinary personality. Once in a day, our Lord Brahma, once every 4,320,000,000 years, this personality, Sri Chaitanya Mahaprabhu, advents to show us how to develop our natural affection and attraction to Krishna, which we have forgotten for so many lifetimes. So Krishna comes 5,000 years ago. Always Mahaprabhu advents 5,000 years later to teach us and show us how to serve Krishna. When Krishna manifested his pastimes, it was not common knowledge, was not understood clearly. What is Parakya Bhav, what is Svakya Bhav, what is Rasa clearly, until the advent of Mahaprabhu and his eternal associates came to expose and explain and describe the wonder of Krishna's pastimes. So 500 years ago, in Navadvip Dham, Jagannath Mishra, he had a wonderful dream. He dreamt that the abode of the Lord entered his heart. He was describing to Sakshi Mata. And Sakshi Mata also, she was explaining to Jagannath Mishra, I am seeing many celestial beings offering me Dandavat Pranam. And Jagannath Mishra was explaining, I am seeing your whole body very effulgent. They both understood at this time that a very special personality was manifesting in the womb of Sakshi Mata. Previously, Sakshi Mata had had 8 daughters and they all died. And then they had one son, Vishwarup. They were so satisfied and pleased with this. But then Chaitanya Mahaprabhu, he remained in the womb of Sakshi Mata for 13 months. Generally 10 months, 9 months is the estimated time when a child will remain in the womb. So Jagannath Mishra and Sakshi Mata became a little worried, disturbed. But it's described how Chaitanya Mahaprabhu was waiting for a very auspicious time. And at that most auspicious time, Providence provided a lunar eclipse. It was understood that only one moon should be illuminating the universe at the time of Mahaprabhu's advent. So Rahu, he covered the moon that we see in the sky, and the most effulgent moon of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arose 500 years ago. At that time, all of the brahmanas, all of the worshippers of Vedic literature, they were chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. The whole of Navadvip Dham, the whole of Bharatvash, the whole world, anywhere where there were devotees, they were all chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Even it's described in Muslims, they were imitating the non-devotees, they were imitating the devotees chanting. So when Mahaprabhu advented, the whole world was luminous with the sound of Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So Mahaprabhu advented in this very auspicious atmosphere of the chanting of the holy name. And then we have heard so many of his childhood pastimes from the lotus feet of Sri Gurudev. He's described how when he was a child, how he would cry until the Brahmin ladies, they would chant Hare Krishna, Hare Krishna. And then when he was very, very small, even 5-6 days old, it was described how all the Brahmin wives, the celestial beings also, they were coming and offering pranam to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So during his pastimes in Navadvip, these very, very sweet pastimes, we see him going through the mood of a scholar, how he was such an erudite scholar, how he defeated Keshava Kashmiri. And very beautifully, Gurudev described the other night how in that debate Mahaprabhu showed his erudite personality. But then on visiting his guru in Ishwarapuri, in Gaya, then he returned in a much more sober mood. And then more of a devotional sentiment was expressed by him. But this time Mahaprabhu, even though endowed with the Kanti and the bars of Srimati Radhika, still was not actually tasting that mood until he came to the Godavari River with Rai Ramananda and this discussion, Rai Ramananda and Sambhad at that time. So up until this point, his complete tasting of these three very special reasons for his advent was not manifest. But nevertheless, at that time in Navadvip, so much madhurya, so much sweetness was being demonstrated by Mahaprabhu in his childhood pastimes, and then after with Ishwarapuri, when he was chanting with the devotees in Srivastangam, the very wonderful kirtans that were taking place. This is described as no different to the Rasa Lila in Vrindavan. So Mahaprabhu, he was demonstrating throughout his entire life devotion and attraction to Krishna in the form himself as a devotee. This is most extraordinary. If we describe any of these teachings to a non-devotee, they must become attractive. These features of Mahaprabhu's life are so attractive to all people of this world. It's described that within the heart of the jiva, ashakti, or attraction to Krishna, is latently there. It's residing in the heart of all jivas. But yet to manifest this, to awaken this ashakti, Mahaprabhu has advented for his own personal reasons, Sri Radhaya Pranaya Mahima, the greatness of Radharani's qualities he wanted to taste, Svadhyena Bhuta, Kibrisham Madhya, that the Madhurima, the great qualities in Srimati Radharani, he also wanted to taste, and the happiness that Radharani experienced from Krishna's own love for her. These so profound reasons that Krishna himself was manifesting to taste his own sweetness will confound any jiva in this world. So this is the greatness of Mahaprabhu's manifestation, completely attracting all jivas to the path of wakening up their natural relationship of service to Radha and Krishna. So Mahaprabhu, in his pastimes in Navadvip, was so exceptionally sweet and beautiful, especially in Srivastangam, these pastimes. Srivastakur and all the devotees, Advaita Acharya, Mukunda, Haridas, Nityananda Prabhu, all these personalities were dancing every night, the most remarkable exchanges of loving affection. Mahaprabhu sometimes would take the form of Vishnu completely, Narayan, and he'd clear Srivas's altar and take his seat there and demand wine from Nityananda Prabhu and take his a mood of Aishwarya, and the devotees would become very intimidated by these moods. And Mahaprabhu at that time, he would give so much mercy to the devotees there. Other times, he would be trying to grab the dust from their lotus feet, and he would be so much in a mood of humility. We see that in his final pastimes in Purigam, many, many years later, 24 years later, when he gave his only instruction in the Shikshastikam, how his moods of humility were so profound. We see in the first two verses of his Shikshastikam how he's explaining so many tattvas and siddhantas, and then finally this Trinalapi Sunishena, he's demonstrating this mood of humility, and throughout his life he's showing these moods in his desire to taste Radharani's moods. So Mahaprabhu, this very significant quality of humility, Mahaprabhu was demonstrating himself. He's Krishna himself, he's the Lord himself, the Lord of all himself, the Supreme Personality of Godhead. And yet he's demonstrating the most humble mood as a sadhak, as a devotee, for us to try and imbibe these moods. If the devotee can hear and can try and emulate or follow these moods of deep humility, understanding that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, I am not the Supreme Enjoyer, that Krishna is the Enjoyer. Just now, Savita, she was speaking very beautifully about the difficulties we have in our practice, why we're not weeping when we're chanting Hare Krishna, why we're not experiencing ecstatic symptoms. And she's describing how our offenses, and these offenses manifest from not being able to sufficiently understand my insignificance in relationship to Krishna and Krishna's devotees. If the devotee can somehow or other catch up this mood, then his life can be successful and he can hear this sublime holy name that Mahaprabhu came to give to the jivas. Mahaprabhu gave so much every moment of his life, just like the radiant sun is constantly pouring down its mercy day after day. Mahaprabhu is like a million suns. The mercy Mahaprabhu is demonstrating is more than this earthly sun. Every day, our difficulty is our own container has holes in it, and our process is to block up the holes and eventually be able to retain these divine teachings in our heart that Srila Gurudev is giving us as the complete medium to Sri Mahaprabhu. So when we sit here in front of our beloved Gurudev, we understand that he is reflecting all of Mahaprabhu's mercy directly into our hearts. So on these days we are feeling so much indebted, deep gratitude to this personality of our Gurudev, who is holding and containing this and just distributing it in exactly the same way as Krishna himself was. Krishna was giving so much mercy through his devotees. When Mahaprabhu, he only gave these eight Shikshastikam instructions, but Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, we were just hearing, all these personalities, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladevi Vibhushan, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Srila Bhakti Pradyan Keshav Maharaj, Srila Avurde, Srila Bhakti Vinod Swami Prabhupada, all the same mood of just giving, exactly like the brilliant golden sun. This giving of pure affection for each other, Gurudev has been describing for so many years. And our relationships with each other also must be in tune with this mood. If we can, this will break our critical mentality. It's described that the nature of a materialist is his envy. So the nature of a transcendentalist is opposite to that. It's his affection for each other. So if we can develop these moods of affection individually even in this world, then surely this will purify our envious mentality. And at some point we'll begin to understand the deeper concepts that Srimad Mahaprabhu came to give and demonstrate through his whole entire life in the Gambhira, his pastimes with Swarup, Damodar and Rai Ramananda are breathtaking for the devotees to listen to and hear about. And the his mood of complete humility are shown so strongly, prominently through his whole life. So at this time, Navadvipa Parikrama, we are praying deeply for a little particle of these moods to be reflected from Srila Gurudev into our hearts so that we will understand these topics more fully and one day pray to be able to weep when we chant, to experience these, this attraction to Radha and Krishna, as is our birthright. Srila Gurudev ki jai, Nityananda Prabhu ki jai, Satchinandana Gaurahari ki jai.
इसके बाद बहुत अच्छा, वेरी गुड. इसके बाद में बेटी मधु महाप्रभु जी के वैशिष्ट और उनकी शिक्षाओं के संबंध में प्रकाश डालेगी. माइक के सामने बोलो, माइक के सामने.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर खुशे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन भरपूर रक्षते योगेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय. सबसे पहले मैं अस्मदीय गुरुदेव पाठकर ओम विष्णु पाद अष्टोदशील भक्ति वेदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज की श्री चरणारविंदों में अपना कोटि कोटि दंडवत प्रणाम की पुष्पांजलि निवेदित करती हूँ. गौर दत्त और गुरु दत्त, गौर दत्त राधा भाव दीदी सुबले और राधा जी की बड़े ही इत्यादि की जो बातें हमने सुनी मैं उसके आगे चल रही हूँ. श्री गुरुदेव कोई भी गुरु जिनके भी जो गुरु हैं वो अलग बात है कि गुरु कैसे होने चाहिए, दैट इज डिफरेंट पॉइंट. जो श्री गुरुदेव हैं वो श्री राधा जी के चरणों की जो नख की छटा है उससे आविर्भूत होकर पृथ्वी पर आते हैं और श्री गौर वो राधा जी के भाव को लेकर आते हैं. तो महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं वही श्री गुरुदेव के माध्यम से हम तक संचरित होती रहती है. श्रीमद महाप्रभु इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे. राधा बड़े महिमा का जो ज्ञान है वो उनका वयस्क भी कहा जा सकता है लेकिन जो समष्टि रूप में उन्होंने काम किया वो भी हमारे लिए विचारणीय है. उस समय यदि साधु सन्यासी परमहंस इत्यादि की जो टर्म से जो डेफिनेशन थी परिभाषाएं थी वो बिल्कुल बदल गई थी क्योंकि महाप्रभु जी करुणा के अवतार हैं औदार्य और माधुर्य से सरोवार हैं. तो कलयुग के जीव मायावाद और सच्चे सन्यासी को समझ नहीं पाएंगे. कलयुग का शिक्षाएं उन्होंने अपनी विभिन्न परिकरों के माध्यम से दी। श्रीमद् महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी उनमें सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में अर्चन और कलयुग में संकीर्तन, इसकी शिक्षा देने वो यहाँ पर आए। संकीर्तन से जो नाम उच्चरित होता है तो हमारे सबके हृदय में जो विषय वासना रूपी हाथी समाया हुआ है और बाहरी जगत में जो चकाचौंध हम देख रहे हैं और उसकी माया से हम आवृत हो रहे हैं, तो महाप्रभु का संकीर्तन ही ऐसा अस्त्र है जो हमारे हृदय के इन सब हाथियों को और बाहरी मायावाद और संजाल का छेदन करवाता है। महाप्रभु जी ने साधारण जीवों को नाम संकीर्तन और उस नाम संकीर्तन की स्थिति बताई। स्वामी हरिदास ठाकुर उनको अग्नि स्थिति में भजन करवाया। रूप गोस्वामी, श्रीवास सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को भजन की शिक्षाएं अलग प्रकार से दी। श्रीमद् महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है उसने अस्त्र का काम किया, क्योंकि संपूर्ण अवतारों में भगवान जब भी अवतार लिए तो उनके हाथ में अस्त्र होता है, लेकिन श्रीमद् महाप्रभु बिना किसी अस्त्र के इस पृथ्वी पर आए थे और नाम संकीर्तन ने उनको पूरे विश्व में उन्होंने डुबा दिया था। और जिस तरह से एक शुद्ध रूप से सबके हृदय में नाम जागा था, सारा विश्व उसमें समा गया। आज भी उन्हीं के नाम महिमा से हम सब लोग अपने हृदय का शोधन कर रहे हैं। श्री नवदीप धाम जहाँ महाप्रभु ने अवतार लिया वो हमारे हृदय के दुर्भावों का परिमार्जन करती है। कल परसों हम जगन्नाथ दास बाबा जी के मंदिर में गए थे, वहाँ 105 वर्ष के संत रह रहे थे। उन्होंने बताया कि जो भाव भक्ति है वो किस प्रकार से वस्तु सिद्धि और वस्तु उपलब्धि के विषय में जो चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने महाप्रभु जी की बड़ी मर्यादा बताई कि भागवत परंपरा में जो हमारे गए थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन भाई है, जब वो वृंदावन में भजन कर रहे थे तो वहाँ से एक स्त्री गई जिसके सिर पर एक टोपी थी, टोपी में महाप्रसाद रखा हुआ था। जगन्नाथ बाबा जी महाराज ने उससे पूछा, वो जो स्त्री थी वो सुई पर थी, भंगी जिसको कहते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस टोपी में क्या ले जा रही हो, तो उन्होंने कहा महाप्रसाद है। जगन्नाथ बाबा जी ने कहा कि अच्छा हमें भी थोड़ा दे दो। उस स्त्री ने दे दिया। वृंदावन मथुरा में पूरे ब्रजमंडल में शोर मच गया कि बाबा सिद्ध बाबा ने ये उन्होंने क्या कर डाला। समाज हो गया, सभा आ गई और बाबा जी से प्रश्नोत्तर होने लगे। बाबा ने कहा कि भाई क्या बात है, उन्होंने कहा आपने क्या कर डाला, क्या हो गया, आपने भंगे की टोपी में से महाप्रसाद खा लिया। तो बाबा जी ने कहा वो भंगन थी मुझे पता ही नहीं, वे कौन थी वो। बोले वो तो द्वारका में एक पट्टानी थी जो वृंदावन के भावों को लेकर यहाँ आई थी। तो हम जिस स्थिति में भजन करना चाहते हैं वो महाप्रभु जी ने हमें शिक्षा स्तर के माध्यम से बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जीव जो है उसका मुख्य तत्व है वो है हरि नाम उपासना, मुख्य तत्व है भगवान श्री गौर की रस उपासना और दूसरा है नाम उपासना। हमारे शंकर गोस्वामी जिस तरह से ग्रंथ लिखने में व्यस्त रहे और संख्या पूर्वक और बिना संख्या पूर्वक नाम संकीर्तन करते रहे और सारे जगत को जो महावदन्यदार भाव से ग्रंथ हमें दे गए वो भी श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से ही है। जब वो श्री सनातन गोस्वामी से मिलते हैं तो उनके शरीर में घाव है, कुष्ठ जैसा रोग हो गया है, फिर भी महाप्रभु उनसे गले मिलते हैं। तो उन्होंने वैष्णवता की हमें शिक्षा दी और भीमहीनता का पाठ पढ़ाते महाप्रभु ने बताया ना जन्म ना जन्म ना सुंदरी काम है, धन भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी भक्ति करते करते हमारे अंदर प्रतिष्ठा की भावना आ जाती है कि मेरी बातों को सुनने वाला कोई तो हो, मेरी प्रतिष्ठा का नारा तो बजना चाहिए। महाप्रभु ने कहा मुझे जन्म भी नहीं चाहिए, इसीलिए जब आज हम चप्पल फटते गए तो महाप्रभु ऐसे गोस्वामी राधा कृष्ण की चंपक पुष्पों से पूजा कर रहे थे, तो एक दिन चंपक पुष्पों से सुसज्जित भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में प्रकट हो गए। वो आश्चर्य से देखने लगे, अपनी पत्नी पद्मावती को बुलाया, उन्होंने कहा कि देखो कितना सुंदर रूप है। तो उन्होंने हतप्रभ होकर जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ और तुम अब जगन्नाथपुरी चले जाओ, तुम्हारे द्वारा रचा गया जो गीत गोविंद है मैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसका रसा स्वादन करूंगा। तो श्रीमद महाप्रभु ने अपनी पूरी व्यवस्था बनाई थी कि मैं अद्वैताचार्य जी ने जो महाविष्णु तत्व है या किसी की दृष्टि में सदाशिव तत्व है, उन्होंने महाप्रभु जी को नीचे बुलवाया, अभिनय करवाया, भूतल पर बुलवाया। तो अद्वैताचार्य के साथ जब वो उनको गुरु मान गए थे तो अद्वैताचार्य का कि मेरा अपराध हो जाएगा, श्रीमद महाप्रभु मेरे जैसे दीन दीन व्यक्ति को यदि गुरु बनाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा। तब श्री अद्वैताचार्य ने जान बूझ कर वेद उपनिषद इत्यादि का माया परत जो वैष्णव तत्व से वैष्णवेतर जो विषय है उसका प्रतिपादन करने लगे। श्री महाप्रभु ने कहा कि अब ये रुकेगा नहीं और नारा नारा के अगर खोल करने लगे। इतना ही नहीं, जब श्रीमान अद्वैताचार्य की कृपा से उनके भाई विश्वरूप चले गए थे और शची माता उन पर क्रोधित हो गई थी तो महाप्रभु ने अपनी माता को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वैष्णव अपराध करके मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें श्रीमान अद्वैताचार्य के चरणों में अपनी क्षमा याचना करनी पड़ेगी। श्रीमान महाप्रभु बाल काल में भगवान श्री कृष्ण की तरह गंगा के किनारे विभिन्न प्रकार से लीलाओं का आस्वादन कराते रहे। कभी उन्होंने ब्राह्मण के साथ बार बार भोजन करके उसको आराधित करते रहे। श्रीमान महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति के अवतार है, प्रतिमूर्ति है। श्रीमान महाप्रभु जब गीत गोविंद का रसा स्वादन करते थे जगन्नाथपुरी में, गीत गोविंद क्या है, भगवान जगन्नाथ ग्रह के आवेश में है। श्री मन महाप्रभु वृंदावन में ग्रह की नाथा के रूप में, जगन्नाथपुरी में ग्रह की नाथा के रूप में है और वही ग्रह श्री गीत गोविंद में हमें मिलता है। गीत गोविंद का रसा स्वादन करते करते महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे, उनकी जो भावना है उनका जो चित्त बल है वो उसमें डूब जाते थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। उनके जो संपूर्ण सेवक थे संत दामोदर, यद्यपि राय रामानंद त्यागी के साथ उन्होंने उन्हीं को सम्मान दिया कि श्री राय जी आप परम ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि भक्ति रस तत्व क्या होता है। इसी तरह से वो सर्व दामोदर के साथ भी उनको सम्मान, तो सबको सम्मान देने की जो प्रथा है वो भी श्रीमन महाप्रभु से चली आई। श्रीमन महाप्रभु ने श्रीनाम की भाव का जन्म लेकर हम सबके अपराधों को भंजन करने का रास्ता बताया। तो गीत गोविंद जब महाप्रभु आस्वादन किया करते थे, जिस गीत गोविंद में ये कहा जाता है कि जिसे पढ़कर ऐसा होता है कि हे शक्कर तुम कहीं और छिप जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, हे मिश्री तुम्हें तो मिठास है ही नहीं, हे सुंदरी ये अधर तुम्हारे अंदर वो मादकता है ही नहीं, हे द्राक्षा तुम्हारे अंदर ऐसी कुमारिता कहाँ से आएगी। ऐसे श्री गीत गोविंद का अपने आने से पहले महाप्रभु रचना करा रहे थे। उसका जो मंगल गीत है शुद्ध कमला कुछ मंडल धित कुंडल कलित ललित वन मार जय जय देव हरे, तो उनकी उपासना कैसी है, उनकी उपासना है शुद्ध कमला कुछ मंडल। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठी हैं और श्रृंगार रस की लीला चल रही है, उसी लीला से उनका प्रथम गीत शुरू होता है और स्वयं नंद बाबा आकर उसकी सुकृति देते हैं और कहते हैं कि हे राधे ये कथक के मंदिर में ने आवाज करना शुरू कर दिया है, शुभ और सारी बोल रही है उठो अब तू अपने घर की ओर चली जा। वो श्री राधा जो हमारे गौड़ का परंपरा है रसस तू परिया हो परिया में ही रस है उसका महाप्रभु जी ने स्थापन कर दिया। उन्होंने जो नाम दिया उसमें कोई विधान नहीं रखा, हंसते बैठते सोते जाते उनकी सभी बेइज्जती है कि ऐसे वातावरण में अभी सारी का महिमा बढ़ाकर अर्धरात्रि में और राधिका देख रही है कि चंद्रमा गगन पर उन्मुख होता चला जा रहा है और श्याम सुंदर अभी नहीं आया। चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरि आगम में बाधा बिलख बिलख परिताप मई अभी रो उठती है राधा बीत रहा संकेत समय पर किन कुंज में आए विफल रूप न भी यौवन मेरा जो न उन्हें ये भाई मेरा जो यौवन किस काम का है ये मेरा रूप किस काम का है यदि वो श्याम सुंदर को आकर्षित नहीं करता। ये श्री राधा के संदर्भ में हमारे संदर्भ में भी हमारा कोई गुण हमारी कोई क्रिया हमारा कोई विकार बेकार है यदि वो हमारे गुरु और भगवान श्री कृष्ण को लुभा नहीं जाता। हमारा जीवन को भी धिक्कार है यदि उसका एक 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 क्षण गौर श्याम सुंदर श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद ठाकुर के चरणों में अर्पित ना हो जाए। श्री त्रिगोविंद के भाव और श्रीमद् भागवत का महाप्रभु अपनी गंभीर लीला में अध्ययन करते रहे। महाप्रभु ने पाद कुपाद का विचार नहीं किया संपूर्ण रूप से वर्षण किया अपनी कृपा का इच्छा शक्ति श्री कृष्ण कृपा के ऊपर अधिक करती वो किसी पर दया करेंगे या नहीं करेंगे। महाप्रभु ने आकर श्री राधा जी के भावों से अपना औदार भाव का वर्षण किया और आज भी उस बरसात की वो सूखी नहीं है हमारे हृदय रूपी मरुस्थल में आज भी बरसात का सिंचन हो रहा है। इसलिए इस नवीन भाव में श्रीमद् महाप्रभु का स्मरण करते हुए उनके भावों का रसा स्वादन करते हुए हम अपने जीवन को जिए। कांक्षा के दलवश के पास मुझे लेके पति नारायण भाभी जी
बहुत सुंदर गवेषणापूर्ण आप श्रीमान श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव महाराज जी कुछ बोलेंगे।
Under guidance of Nityananda Prabhu, Jiva Goswami gave this. after that all Guru Vargas, they did Navadi Parikrama. Nowadays, we are doing under guidance of the Bhagavatam Navadi Dham Parikrama. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has so many, he donates so many things to us. As before, all this spoken in our scripture, Santo Pankaya Navasa Saradu Bhadra Kintu Krishna Rakhapu Vala Kastri Pramadu Bhavati. Krishna, the young Santam Krishna pain, and he distributes pain. To whom? The Chaitanya Dhamdham from the Kripas, the priest. But who, to whom he distributed? It was his own associates, not to others. He never gave unqualified person. But what Mahaprabhu did? Who even not qualified? Mahaprabhu made him qualified and distributing Krishna pain. Mahaprabhu is so generous. He mentioned in scripture, among the Ayu Prabhu, Nahitimubane, Krishna pain, Jarna, Jara, Guru, Darasane. Sri Chaitanya Mahaprabhu is so broad-minded. Even whoever will see him from far distance, Krishna pain will manifest in his heart. This is his one donation. Not only that, even whoever heard Mahaprabhu's name from different ways from far distance, they only heard from this, all South India became Vaishnavas by influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Manila Pushottama Ramchandra came. He has bow and arrow. Krishna has this. And Mahaprabhu could have very arm. Mahaprabhu promised, in this incarnation, I will not kill anyone. By praying, by giving prayer, was of the heart of others, like Jogai and Madhai. What Mahaprabhu did? When Mahaprabhu heard that Madhai hit Nitananda Prabhu, Mahaprabhu appeared there with his death. Then Jogai and Madhai became scared. Nitananda catch on his feet, Prabhu. In this lifetime, in this incarnation, you promise you will not kill anyone. So give to Nitananda's prayer, Mahaprabhu stop his chakra. So this is another donation. Moreover, when we do bhajan, after Shraddha Nishtha, like in step by step, when we achieve in prayer, then Krishna will give darshan. When devotee took his darshan, he became faint. He said, oh, why I have so much duty? If my devotee could not taste it, then Krishna mercifully caressed him. When he woke up again, giving sense, Sri Krishna again became faint. Again Krishna told, oh, I am so beautiful, so much quality, still my devotee could not test this. Then Krishna called his wife sweet voice. After that he spread his bodily fragrance, but devotee could not catch all this thing at a time. But Mahaprabhu is so generous. Mahaprabhu is Odhagyamaya Vigraha. Krishna is Prem Purushottam, you are Ramchandra. Krishna is Riya Purushottam, you are Ramchandra Madhava Purushottam, or Sri Chaitanya Mahaprabhu Prem Purushottam. In at a time, he is giving the quality to get all this Krishna's Saundaryam, his beauty, Madhuryam, his sweetness, Sausar, the sweet voice, and sweet fragrance of his body. All these devotee can, Sri Krishna can accept all these things without being faint. So Mahaprabhu Odhagya. When all this quality can, devotee can accept this called Odhagya. And Mahaprabhu giving this Mahaprabhu's another donation. Mahaprabhu Odhagya Maya Vigraha. How we can get this? Only by Krishna Mahima Guru Seva. If we serve Guru Bhagavatam wholeheartedly, without being hypocrite, then we can get this. Why? Because Guru Bhagavatma is the incarnation of Srimad Nityananda Prabhu and Nityananda is the most generous person in this world. Mahaprabhu Mahabharana, but Nityananda Prabhu is more Bharana than Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, the best of Chaitanya Lila, Vrindavan Das Thakur, when he was describing about Nityananda's first time, he influenced so much. All the Chaitanya Bhagavat made the body of Nityananda Prabhu, not to Chaitanya Mahaprabhu. So, had to make Chaitanya Chaitanya become the body of Chaitanya Mahaprabhu, and he told, I am taking the remnant of Vrindavan Das Thakur, I am making about Chaitanya Mahaprabhu. So Guru Bhagavatam is more generous than Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Mahaprabhu came, we are there, again we are there. This is Ramchandra again we are there. No one could have kept us here to bring in this line. Only Guru Bhagavatam did this. So I get to Guru Bhagavatam. In one hand, Guru Bhagavatam is incarnation of our manifestation of Nityananda Prabhu. By other hand, is very near and dear to Smriti Ramakrishnani. So they mention Radha Samka Samsakti, Sakhi Sandra Nivasini, Tamam Sakandam Devan, Rasa Vigraham. Who is he? Is in his bag is mentioned Krishna Nandaya Bhimahi. What is doing? He is pleasing Sri Chaitanya Mahaprabhu. His name is Krishna Chaitanya. So Guru Prabhupada in one hand having Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Other hand is having Sri Krishna, so Krishna Nandaya. Another hand is having Krishna Anandaya. Means he is having Srimati Radha Thakurani. So Radha Samka Samsakti. Any man can serve Chaitanya Mahaprabhu Sri Krishna without being teenager, none can serve Srimati Radhika. The mention in Chaitanya Chaitanya in Mokhali Ashtamaka 8th chapter. That is how it is working, none can serve divine practice of Srimati Radhika. So Guru Prabhupada has told this all to us. This is also the rest of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Moreover, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he by his mercy, Sanatana Vasudevaya is narrated in Vrihad Bhagavatamritam. The Gaurangaka Gurudev come in this world, advised by Srimati Radhika. See, Sanatana Vasudevaya has in Vrihad Bhagavatamritam, he told where he sent to Sarup. In his story, he mentioned Radhaya Adhishta being advised or ordered by Srimati Radhika, Sarup came to deliver Janasrama from this world. So Guru Prabhupada, in one hand is incarnation of or manifestation of Nityananda Prabhu, other hand he came in this world by order of Srimati Radhika, because he is very near and he acts Srimati Radhika. So if we start Guru Prabhupada without being hypocritical, we to have it in all this doctor, which deep question God has learned from Nityananda Prabhu in manifest in our heart. So first of all, we have to serve Guru Prabhupada. By his mercy, he will transfer this service attitude to Mahaprabhu, and Mahaprabhu, by his son Mahaprabhu, in surgical mood, and Mahaprabhu manifests in front of us, in front of divine Kapil. She mentioned by our previous Acharya, Gaurakima Rasalayanabe, Setaranje Jaradube, Seradha Madhava Antaranga, Grihe Bhava Pamete Thakke, Thakodanga Bhole Rake, Narottama Magetha Sanga. Whoever serves Sri Chaitanya Mahaprabhu, then one day, when his Bhagavan will naturally serve the Lord, Mahaprabhu will manifest in front of him in a divine temple. There is no other accord. And if we attain mercy of Navati Dham, then we can attain mercy of Vrindavan Dham. So he mentioned about Acharyas that without mercy of Navati Dham, Arahito Navavanam Vrajakanta Nante, Narahito Navavanam Vrajayi Vatune, Arahito Jyashuta Vrajanagaraste, Narahito Jyashuta Matayava Krishna. If we do Aradhana Navavan means Vrindavan, Navati Dham, then we can get mercy of Vrindavan Dham. To be not perceived or not do bhajan of Navati Dham, Vrindavan is far far away from us. If we do bhajan of Jiva Sutra means Brahman boy, who is the Brahman boy? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lord Krishna came in Gop dynasty, Lord Ram came in Chakra dynasty, but Mahaprabhu came in Brahman dynasty. So whoever serves Mahaprabhu is, then he can get Krishna in Paramahansa mood. If not so, then Krishna is far far away from us. Mahaprabhu had another dimension, he taught to his associate. Whoever serves Chaitanya Mahaprabhu and Divine Gaurus, especially in this Kali Yuga, after our partition, our soul will be divided in two parts. One is they go to Navati Dham, they serve Navati Dham to Mahaprabhu, my other. So we go to Vrindavan and it's hard to define properly. So main key of this are to start Guru Prabhupada being wholehearted and in the hypocrite. So we can do serve or we can serve Mahaprabhu and Divine Kapu simultaneously, then our life is successful. So I am humble, grateful to all Vaishnavas and Vaishnavis. Please bless me, then I can serve Guru Prabhupada eternally and the guidance of Vaishnavas. Bhansaka Bhakti Vaishnavas, Prabhu Nidhaya.
Very good. excellent. Now,
যারা হরিনাম শিক্ষার জন্য নাম লিখাতে চান, রসুগল সভা ব্রহ্মচারীর নিকট আমাদের দেশের কান্তকে নাম লিখে দিন। গৌর পূর্ণিমার দিন নটার সময় হরিনাম শিক্ষা অনুষ্ঠান হবে। যারা হরিনাম শিক্ষাকে নিয়ে নাম লিখানো চাহতে, কৃপয়া আমাদের রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার নিয়ে যাওয়ার সুগল সভাপতিকে পাশ নাম লিখা দেন। তুমি বার ফোন করে রেজিস্ট্রেশন যে একটা রেজিস্টার দেন যে সুগল সভা ব্রহ্মচারী নিকট রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার
of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we've heard from so many exalted and senior Vaishnavas deep and varied realizations about these remarkable teachings. It's humbling and overwhelming, and I had many different things planned in my mind, but the last minute hearing Sri Padmanabh Maharaj's speech, something completely different came into my mind. And I thought that one of the specialties of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu was his display and his emphasis on the principle of Guru Nishtha and understanding bhakti and developing love of Krishna, Radha Krishna, by following in the footsteps of all of our previous acharyas, Mahajana, Yenkatasa, Panka. Arshila Prabhupada, it's very fond of the story of Mahaprabhu that he would tell quite frequently. That one time a very learned Vaishnava came to Mahaprabhu and he said, I have written a commentary on Srimad Bhagavatam that is actually surpasses that of Sridhar Swami. Sridhar Swami's commentary on the Bhagavatam is the first and it's the foundation and the most exalted and illuminating commentary. But this personality had said that, oh, my commentary has surpassed Srimad Swami. Srimad Mahaprabhu turned to him and said, anyone who neglects Swami, indicating Srimad Swami, but also Swami also means husband, anyone who neglects their husband or a great authority, I consider a prostitute. Okay? And whatever they like, I don't consider them. So everything that we know, all that we do in our bhakti, must be predicated and based on the example and teachings of our acharyas, specifically our own gurudev and our shiksha gurus. Now, since I came into this subject, I have tried desperately to understand the Madhavishya and the moods of seva of our beloved Srila Bhakti Vyantanayana Goswami Maharaj. And it's only recently, but I've come to understand that if you want to please Srila Gurudev and really enter into his heart and know his mood, you must also understand and know the mood of his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshe Goswami Maharaj. And we are blessed with many outstanding publications that we feel that mood, particularly the Harmless magazine and something in the back of our songbook, this Upadesh Gavali of Srila Bhakti Pragyan Keshe Maharaj. Now how does this relate to the teachings of Mahaprabhu? Because Mahaprabhu's teachings and his movement of bhakti and how he developed it is revealed through the writings and example of our acharyas. Now, what did Mahaprabhu do in order to execute his bhajan, in order to perform bhakti himself? We're hearing every day about this wonderful exalted philosophy, but what did Mahaprabhu actually practice? What was his example? Well, every day when we go on parikram, at each spot, if you read the Navadvipa Mahatmya of Srila Bhakti Vinodhakura, they always say how Mahaprabhu came to this spot. And at this spot, today for instance, he went to Radhakura. And Srila Nityananda Prabhu is relating to Srila Jiva Goswami. Here Mahaprabhu came during the midday. And during the midday, he was absorbed in the mood of Krishna's Ashtakada Leela, and he was chanting ecstatically with his associates. Another time we read in the song of Bhakti Nirodhapur, Srila Bhakti Charya Ringo, about Mahaprabhu. What does he do on Ekadasi? During Ekadasi, from the very early morning until just 3 hours before sunrise, he goes out and ecstatically chants in Nava Sankirtan, from one point to the next to the next. And factually, so much of Mahaprabhu's activities during his Navadvip pastimes were filled with this Nava Sankirtan, this wonderful public congregational chanting of the holy names of the Lord. Srila Gurudev himself has emphasized over and over that there are two things, there's book distribution and Nava Sankirtan. These forms of preaching are the left and right hands of our movement, of the spreading of Krishna consciousness. And this was the actual example of Mahaprabhu. When Mahaprabhu was talking to Prabhasananda Saraswati, he said, when they said, why don't you study Vedanta? Why don't you act like other sannyasis? Why aren't you brave? Why are you running around chanting like a sentimentalist, like a madman? He said, my spiritual master considered me a great fool. He considered me unqualified to study Vedanta. So he's given me this mantra, and he told me to chant this day and night. And I found if I chanted this mantra, I became like a madman. And I asked my spiritual master, what kind of mantra have you given me? My spiritual master is very pleased. So, not that we're not meant to study, not at all. But this study will not take effect unless we put into practice the principles. Now, I just want to read one little thing. In his own Upadesha Avalesha, Bhakti Siddhartha Saraswati Thakur has said in number 6 that, and he received this instruction from Srila Bhakti Vinod Thakur, that to publish and distribute transcendental literature and to preach Hare Katha through non-hatha programs, I consider real service to Shudam Mayapur. We have come to Sri Gaumaya for Sri Gaumaya to soak up the mood of service, to try to understand this Leela, to enter into this mood. But how are we preparing ourselves? You don't just come here without any preparation. That preparation is daily from our time away from the dawn by chanting, by preaching, by spreading this Krishna consciousness. And Sri Bhakti Siddhartha Saraswati Thakur said, to print and publish, distribute transcendental literature, and to preach through non-mata programs, this is real service to Sri Ramayana. By this, we can taste this mood. Every day when we are supposed to go out, what are we doing? We're supposed to follow in the footsteps of Mahaprabhu. That doesn't mean just trudging along, talking with each other, although sometimes we do, we're catching up, and our kids on parties keep going ahead and we can't hear. But actually, the real benefit comes by being right by that cart,
And they hear about chanting, they hear about all the principles of devotional service, but there are always some who have a tendency to go and want to do solitary bhajan, to go out to Ramakund and to enter into some deep meditative state, chanting Hare Krishna and thinking about Radha and the gopis in Ramakund. I want to enter into my bhajan deeply. But, according to Srila Bhakti Vrindavan Krishna Maharaj, this is not the mood of Mahaprabhu. He says, does everybody read this? Do you know this book? Do you know where this is in the song book? Have you read this? You should read this. You should study this. He says that first of all, the Anga of Bhakti, known as Kirtan, is the best and most complete limb of Bhakti. But how to perform it? It says to speak Hare Krishna always and everywhere, and being absorbed in speaking about services related to Krishna is real silence performing preaching Hare Krishna always and everywhere is real Hare Krishna. And not to go off into the solitary bhajan of the five bhajans in Radha Kund, but to stay in the association of devotees doing group preaching, group sankirtan. This was the mood of Mahaprabhu and his associates. There may have been some very advanced devotees, such as Haridas Thakur, who spent a great deal of time in solitary bhajan, but they also spent a great deal of time in the association of Mahaprabhu and the kirtan party. So, this was my small realization. This small thing I wanted to share. Thank you very much. Please give me any thoughts or questions.
Very good. Kalke program announced.